ये 94 नंबर का श्लोक है। शंकराचार्य कह रहे हैं, उपादानम प्रपंचस्य मृदभाण्डस्य एव कथ्यते अज्ञानम चैव वेदांतै तस्मिन् नष्टे को विश्वता। संसार क्या चीज है? तो जब किसी वस्तु को आप समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो प्रायः हम परंपराओं के हिसाब से सोचते हैं और जानते हैं। संप्रदाय सब अलग अलग होते हैं। एक पहले यहां आदमी आता था, हरिभाई का बड़ा दोस्त था, वो स्पिरिचुअल सेंटर के ऊपर वो रहता था, प्रणामी संप्रदाय का था वो, हाँ, जोवन पुत्र। एक बार उसके घर में मैं भोजन करने के लिए गया, उसने बुलाया, तो शायद कुछ अभी आजकल के लड़के सब अपने ढंग के होते हैं, सब वो शादी किसी दूसरे से किया है शायद उसने, तो मेरे को बोला देखो महाराज ऐसा ऐसा हो गया। हमने उनसे कहा देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो उसने अपने घर में अपने बाप का फोटो रखा हुआ था और शायद वो सौराष्ट्र का था और सिर में ठांटा वांटा बांधा हुआ। हमने कहा ये कौन है? बोले हमारे पिताजी हैं ये। हमने कहा लगते तो नहीं है। उसको बहुत बुरा लगा। हमने कहा आप अपनी शकल में देखो और इसकी शकल में देखो, जमीन आसमान का अंतर है, आदिवासी जैसा लगता है। जितना बाप तुम्हारे, जितना अंतर तुम्हारे बाप में और तुम्हारे में है, उससे ज्यादा अंतर तुम्हारे में और तुम्हारे लड़के में होना जरूरी है। आदमी अपना और अपने बाप का अंतर तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपने बेटे और अपना अंतर स्वीकार करने में उसको बड़ी तकलीफ होती है। यही परेशानी का कारण है, क्योंकि उसकी बेटे के प्रति बड़ी आत्मीयता वाली बुद्धि होती है। और आत्मीयता क्या चीज होती है, इसको कभी आप समझें कि वास्तविक में आत्मीयता है क्या चीज। एक बारी की बात है, मैं पुणे में रहता था, तो बंबई से कोई आदमी हमसे मिलने के लिए आए, दो तीन लोग आए, तो उनका एक लड़का भी साथ में था, तो थोड़ा मानसिकता थोड़ी कमजोरी वाली है, तो उसके हाथ से जो है ना चाय का गिलास गिर गया और नीचे गलीचा बिछा था पुणे में उस समय। तो मैंने देखा उस आदमी ने थोड़ी बच्चे पे गुस्सा तो किया, लेकिन उसके चेहरे को देख करके ऐसा लगा कि उसको ये एहसास हो रहा है गलती मैंने कर दी। मैंने उसको कहा भाई देखो इसी को आत्मीयता बोलते हैं। जहां आपको बेटे की गलती पे एहसास हो रहा है कि गलती है नहीं, आत्मीयता यही है। अब परमात्मा को प्रत्येक प्राणी के साथ में इतनी ही आत्मीयता है। जो गलती करता है वही करता है, उसको ऐसा एहसास है। पुण्य करता है वही करता है, पाप करता है वही करता है। बहुत गहराई से परमात्मा के बारे में सुनना एक अलग चीज है। कबीर ने एक बात लिखी है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैट, मैं बपूरी डूबन डरी रहे किनारे बैठ। यहां हम लोगों को एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हम कथा सुन के आ गए, हमें परमात्मा मिल गया। नहीं, कबीर ने कहा जिन खोजा तिन पाइया। उससे तुम समुद्र के अंदर की कहानी पूछ सकते हो और वो तुम्हें बता सकता है। अभी स्वामी जी भागवत की बात कर रहे थे ना, बड़ी अच्छी बात चल रही थी कि श्रीधर ने अलग बोला और वल्लभाचार्य ने अलग बोला, अलाने ने अलग बोला, फलाने ने अलग बोला और सब फिर उसी के गाने गा के सब अपने पेट भरने का जुगाड़ करते हैं। जो जिस संप्रदाय का होगा वो बोलता है उस संप्रदाय के आचार्य ने बड़ा अच्छा क्या बोला, महाप्रभु ने क्या बोला। तू देख उसने जो बोला वो शायद उसने जाना हो, तू देख तू क्या कर रहा है। वो उसका नाम लेके पेट भर रहा है, वो उसका नाम लेके पेट भर रहा है। कबीर कहता है मिलेगा तो उसी को जो खोजेगा। जिन खोजा तिन पाइया, और खोजने के लिए कबीर कहता है कि हेरत हेरत हे सखी मैं भी गई हेराए। खोजते खोजते खोजने वाला खो जाता है और जिसको खोजने जाता है वही हो जाता है। बस नदी के किनारे वहीं समाप्त होते हैं जहां नदी समाप्त होती है। किनारे क्या है मालूम है आपको? ये जीवन और मृत्यु दो किनारे हैं। आप गौर से देखेंगे किनारे कभी आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन साथ साथ में जरूर चलते हैं और वहां तक चलते हैं जहां तक नदी समाप्त न हो जाए। ऐसे ही जीवन जहां से शुरू होता है मृत्यु वहीं से मनुष्य का पीछा करना शुरू कर देती है और फिर जहां जीवन समाप्त होता है वहां मौत भी समाप्त हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं इसका क्या काम, इसको जीवन के अंदर मनुष्य ये जो सारी जो चीजें हैं ये सुख प्राप्त करने के लिए है। अब वो वेदांत में अखंड सुख कह देते हैं, सुख कैसे प्राप्त किया जाए। हम बनारस में जब पढ़ते थे तो शास्त्री में हमने जो सब्जेक्ट ले रखा था वो सर्वदर्शन का सब्जेक्ट ले रखा है। उसमें पाश्चात्य दार्शनिकों का भी पढ़ाते हैं और भारतीय दार्शनिकों का भी पढ़ाते हैं, तुलनात्मक अध्ययन होता है। दुख की निवृत्ति के बारे में ऐसा नहीं है कि भारतीय दार्शनिकों ने सोचा है, पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी सोचा है। काल मार्क्स ने भी दुख के बारे में सोचा है। काल मार्क्स का क्या कहना है मालूम है आपको? दुख का कारण क्या है, क्या है? जैसे तुम वल्लभाचार्य को मानते हो ऐसे ही काल मार्क्स को बहुत बड़ी दुनिया मानती थी। रशिया किसको मानता है, चाइना किसको मानता है, क्यूबा किसको मानता है, कोरिया किसको मानता है? कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है इसका जन्मदाता कौन? कोई नया सिद्धांत पैदा आदमी को दुखी करने के लिए नहीं, सुखी करने के लिए नया सिद्धांत पैदा होता है। मैं किसी चैनल पे न्यूज देख रहा था एक दिन, कहीं बैठा हुआ था, उसमें उसने दिखाया चाइना में 1000-2000 व्यक्ति बहुत सुखी होंगे, लेकिन बाकी सामान्य व्यक्ति तो बहुत दुखी है। वो किस प्रकार के रहने के घर हैं, इतने दुखी तो शायद तभी नहीं होंगे। उसने कार्ल मार्क्स ने कहा, दुनिया में दुख का कारण आर्थिक असमानता है, इसलिए आर्थिक समानता होनी चाहिए। बड़ा जुगाड़ किया, लेकिन हो नहीं सका ऐसा। शायद आज चाइना के राष्ट्रपति के पास में इतनी सत्ता है कि कभी वहां के राजा के पास इतनी सत्ता नहीं होगी। ये बताया उसने दुख का कारण। फ्राइड को पढ़ो तो फ्राइड कहता है दुनिया में दुख की निवृत्ति हो नहीं सकती। यदि आदमी को स्वतंत्र छोड़ा जाए तो आदमी पशु की तरह शैतान हो जाएगा, और यदि आदमी पे प्रतिबंध लगाए तो आदमी पराधीन हो जाएगा। तो इसलिए दुख तो संसार से कभी हट नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जो दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा नहीं, दुख निवृत्ति का उपाय है। और बुद्ध ने जो एक बात कही है, उसने भी अच्छी बात कही कि दुख निवृत्ति एक जीवन की अवस्था है। आप अपने जीवन में ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जहां दुख आपको छू नहीं सकता। ये परिवर्तन आपको अपने में लाना होता है। आप कभी पढ़ते हैं, पढ़ो, आप लोग पढ़ते होंगे, कितनी बड़ी बड़ी क्रांति हुई। फिडेल कास्त्रो था, जो कहां का था, वो क्यूबा का ही राष्ट्रपति था ना, बड़ी क्रांति की, लेकिन वो राजा बन गया। तो वास्तविक में दुख निवृत्ति जो एक अवस्था जीवन की है, इस अवस्था का पता, इस अवस्था की प्राप्ति मनुष्य को तभी हो सकती है जब मनुष्य कारण का विचार करे। कारण का विचार किए बगैर दुख निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है, और कारण पर व्यक्ति जाता नहीं है, उलझ जाता है। इसलिए बोलते हैं, देखो, उपादानम प्रपंचस्य, ये जो प्रपंच है, इस प्रपंच का उपादान कारण क्या है? प्रपंच का उपादान कारण, ये प्रपंच मैंने पांच चीजें हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण, ये सब हैं, पांच वृत्तियां, इसको बोलते हैं प्रपंच। ये सब पांचों चीजें जहां पर अच्छी तरह से उलझ गई हों, इनका उपादान क्या है? तो उपादानम प्रपंचस्य मृदभाण्डस्य एव कथ्यते। जैसे सारे मिट्टी से बनने वाले बर्तनों का कारण एक ही है, क्या? मिट्टी। कहते हैं ना, एक बार किसी ने उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा, महाराज जी आप बोलते हो संसार मिथ्या है, ये कैसे मिथ्या, झूठा कैसा है ये? तो महाराज जी ने कहा उनसे, अरे नारायण, ऐसा है कि आप शास्त्र को मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले, महाराज जी शास्त्र को मानते हैं इसीलिए तो आपके पास आते हैं, और क्यों? तो बोले, शास्त्र तुमने पढ़ा, ये पृथ्वी किससे पैदा हुई? पृथ्वी किससे पैदा हुई? जल से, हां पृथ्वी जल से पैदा हुई। जल किससे पैदा हुआ? अग्नि से। अग्नि किससे पैदा हुई? वायु से। अब वायु किससे पैदा हुआ? आकाश में ने क्या, पोलम पोल, आकाश में ने क्या पोल, ये सब पोल से पैदा हुए हैं, इसलिए ये सब पोलम पोल है। देख लो, ये कुछ नहीं से सब कुछ पैदा हुआ। आकाश बोले तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं से जो पैदा होगा वो झूठा होगा। कुछ से जो पैदा होगा वो कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं से जो पैदा हुआ है उसको तुम सब कुछ मान बैठे हो, ये गजब की बात है। इसलिए बोलते हैं ये संसार को मिथ्या क्यों कहा? बोले इसका उपादान कारण क्या है? जैसे घड़े का उपादान कारण तो मिट्टी हो गया, ऐसे ये प्रपंच का उपादान कारण क्या है? तो बोले प्रपंच का उपादान कारण है अज्ञान। ये बड़ी मजेदार बात बता दी। ये जो चीजें पैदा हुई हैं ये अज्ञान के कारण, जैसे रस्सी में जो सांप पैदा हुआ वो रस्सी के अज्ञान के कारण पैदा हुआ, वो किसी सर्पणी से पैदा नहीं हुआ। यदि वो सर्पणी से पैदा होगा तो उसको पकड़ने के लिए किसी सपेरे को बुलाना पड़ेगा, लेकिन हुआ ही वो रस्सी से पैदा। अब रस्सी से पैदा नहीं हुआ, वेदांत कह रहा है अज्ञानम चैव। वेदांत ने यह निश्चय किया संसार एक आदमी के अज्ञान से पैदा हो गया, और अज्ञान भी किसका? जो आपके बहुत ज्यादा करीब है, अपना। और अपने अज्ञान से ये प्रपंच इतना तकड़ा खड़ा हो गया, इसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय है अपना ज्ञान, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जिस दिन व्यक्ति को हो गया उस दिन जीवन में सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। कारण क्या है दुख की निवृत्ति कैसे हो जाती होगी? उस दिन आदमी अपने को शरीर से अलग देखने लगता है, महसूस करने लगता है। आप लोग बोलते हो इतवार के दिन बोलते हो, ठीक है, वो ठीक रखा है सिस्टम, छुट्टी के दिन ही ऐसा हो सकता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये तो छुट्टी के दिन ठीक है, ये बाकी दिन तो मनोबुद्धि अहंकार सब हम मैं ही हूं। उस दिन इसकी छुट्टी कर दो थोड़ा देर के लिए, न मैं मन हूं। और आपने इतनी साधना आप करके देखो कि मैं मन नहीं हूं, आप हैरान हो जाओगे, आपके जीवन में इतना सुख होगा, मान अपमान आपको छू नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात इतनी गहरी होनी चाहिए जैसे तुम्हारे को ये निश्चय है कि मेरा पड़ोसी मैं नहीं हूं। पड़ोसी के सुख में शरीक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पड़ोसी के सुख को अपना सुख मान लेना ये गलत चीज है। सुख में सबके शरीक होइए। ये इंद्रियां जो हैं ये तुम्हारी सबसे करीब की पड़ोसी हैं। दो होते महात्मा लोग कहते हैं, एक अड़ोसी होता है, एक पड़ोसी होता है। अड़ोसी का मतलब जो हर बात में अड़ता रहता है, नड़ता रहे। और एक पड़ोसी होता है जो हर बात में आपका सहयोग करे। तो ये इंद्रियां जो हैं आपकी अड़ोसी हैं कि पड़ोसी हैं? आप जो यहां सुबह आते हैं उनकी तो पड़ोसी हैं शायद, क्योंकि सहयोग करती हैं। हर अच्छे काम में सहयोग करे वो पड़ोसी, और हर अच्छे काम में टांग अड़ाए वो पड़ोसी, बुरे काम में साथ दे वे। तो ये इंद्रियां जो हैं इनको अपने पड़ोसी बनाओ, इनका सदुपयोग करो, ये तुम्हारे इतने सहयोगी बने कि आपको जीने में मजा आ जाए। इसलिए बोलते हैं अज्ञानम चैव वेदांतई, ये जो प्रपंच उत्पन्न हुआ, ये प्रपंच की उत्पत्ति का जो कारण है वो आदमी का अज्ञान है। देखो उदाहरण के लिए आगे बताएंगे भाष्यकार, सपने में पैदा कुछ नहीं होता लेकिन दिखता सब कुछ है, उसका कारण यही है कि सपने में आप अपने को भूल जाते हैं, और जब आदमी अपने को भूल जाता है तब आदमी उसके साथ में उलझता है जो होता नहीं है। जब अपने को भूल जाता है तब आदमी अपने को वो समझने लगता है वो जो है नहीं, जैसे रस्सी को आप भूल गए सांप समझने लग गए उसको, इसी प्रकार से जब आदमी अपने को भूल जाता है तब वो अपने को कुछ और समझने लगता है। एक उपनिषद की श्रुति है, न तत्र रथा न रथ योगा अथ पंथानम सृजति, कुछ नहीं है वहां और इतनी बड़ी दुनिया खड़ी हो गई। इसीलिए बता रहे अज्ञानम चैव वेदांतई, वेदांत ने, वेदांत का अर्थ हो गया ज्ञान कांड ने, ज्ञान ने यह निश्चय किया कि अज्ञान ही इनका उपादान कारण है। उपादान कारण मैंने जैसे बस घड़े की सत्ता मिट्टी की वजह से है, इसी प्रकार से हर चीज की सत्ता आत्मा के अज्ञान के कारण व्यवहार की सत्ता बनी हुई है। उसके लिए एक ही की तस्मिन नष्टे, फिर बता दिया इसे आगे बता रहे हैं, तस्मिन नष्टे, उस उपादान कारण के नष्ट हो जाने पर वो विश्वता, फिर जगने के बाद आप सपनों में पाई हुई चीज को ढूंढने की चेष्टा करें, कोशिश करें, तो फिर वो बात तो जमती नहीं कुछ, मुझे लगता नहीं कोई करता भी होगा। इसी प्रकार से जब व्यक्ति परमार्थ में प्रवेश करता है तो कहीं उसकी व्यवहार के प्रति ममता नहीं रहती। जैसे प्रातिभासिक स्वप्न से जगे हुए व्यक्ति की स्वप्न के पदार्थों के प्रति ममत्व वाली बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार से जो व्यक्ति परमार्थ से जग जाता है, जैसे वहां नींद का टूटना जरूरी है, इसी प्रकार यहां अज्ञान का टूटना जरूरी है। अज्ञान टूटा, व्यवहार देखो स्मृति रहेगी उसकी, सब रहेगा, लेकिन उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी। आप लोग वेदांत सुनते हैं, न तो वस्तु नाम बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। एक दादा अपने पोते के साथ में जादू का खेल देखने गया, छोटा बच्चा था 3-4-5 साल का। जादूगर ने मुंह से जो है 100-100 की नोट निकाली, और अभी का जादूगर होगा तो 2-2 हजार की निकालेगा, फटाफट 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 फटाफट। पोता आजकल तो बच्चे बड़े चालाक हो गए, वो चालाक इसलिए हो गए कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारे घर में पैदा होकर आया है, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे से कौन लेगा सेवा, तुम्हारा बाप ही तुम्हारे से सेवा ले सकता है। अब तुम पैदा होगे तो कोई कम खुरापाती पैदा नहीं होंगे, तुम में सब ज्ञान होगा, अध्यात्म का ज्ञान भी होगा, व्यवहार का ज्ञान भी होगा। हम लोग कहते हैं बच्चा बड़ा होशियार है, अरे होशियार नहीं, ये बूढ़ा है, ये अपना रूप बदल के तुम्हारे सामने आया हुआ है, जरा पहचाना उसे। और ईश्वर की लीला बड़ी गजब की है, नहीं पहचानते इसलिए उसको डांट भी लेते हैं, फटकार भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। भागवत में लिखा है कि यशोदा कभी कृष्ण को डांटती है, फटकारती है, तो भगवान उसको महात्म्य की विस्मृति करवा देते हैं। इसलिए आनंद है, जीवन की लीला का आनंद यही है। यदि स्मृति बनी रहे तो बड़ा कठिन है। आप लोगों ने तो रामायण में सुना हुआ है, मनु और शत्रुपा जब तप कर रहे थे, भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद महाराज मनु से कहा कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं। मनु ने कहा महाराज आप सामने खड़े हों और आपके सिवाय कुछ मांगा जाए, ये आपका अपमान है। आदमी बड़ा बुद्धिमान होता है, वो भगवान को मांग रहा है लेकिन बड़ी बुद्धि लगा के मांगता है, क्योंकि आपसे आपके अलावा यदि कुछ मांगा तो ये आपका अपमान है, क्योंकि जो मांगा जाएगा वो आपसे श्रेष्ठ होगा, तभी मांगा जा सकता है। और मेरी बुद्धि ये कहती है कि आपसे ज्यादा श्रेष्ठ दुनिया में कुछ है नहीं, तो मैं आपको मांगता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर भगवान शत्रुपा के पास में गए। ऐसी कम पत्नियां होती हैं जैसी शत्रुपा होती है। किस मामले में मालूम है, जरा समझ लो आपकी पत्नी ऐसी है कि नहीं। शत्रुपा ने कहा महाराज मेरे पति बड़े बुद्धिमान हैं, कोई पत्नी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि मेरा पति बुद्धिमान है। उसने कहा मेरा पति बड़ा बुद्धिमान है, बाद में मूर्ख भी सिद्ध कर देती है, और उसने जो मांगा वो बहुत अच्छा मांगा, मैं भी वही मांगती हूं, लेकिन मुझे ये स्मरण रहे कि तुम परमात्मा हो, बस। फिर भगवान गए उसके पास, मनु के पास में। उसने कहा तुम्हारी पत्नी तो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब पति भी कहां कम, वो भी अपनी पत्नी को कभी बुद्धिमान मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा बड़ी बुद्धिमान है। बोले क्या हो गया। बोले उसने कहा देखो कि हम उनके घर में बालक रूप से जन्म तो लेंगे, लेकिन उसने कहा कि उसको पता रहे कि ये परमात्मा है। मनु ने कहा यही तो बेवकूफी है, ये बुद्धिमानी की बात नहीं महाराज। बोले क्यों। यदि पता रहेगा तुम जो है भगवान है, न तो तुमको चांटा मार सकता हूं, न गोदी में खिला सकता हूं, 24 घंटे ये पता ही साथ में जो है, संसार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। महात्म्य की विस्मृति, लीला का आनंद लेने के लिए महात्म्य की विस्मृति जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि राम के वियोग में दशरथ तो मर गए लेकिन कौशल्या नहीं मरी, क्योंकि कौशल्या को यह पता था कि ये परमात्मा है। लेकिन मंद मंद स्मरण और मंद मंद विस्मरण था, लेकिन महाराज दशरथ को जो है ना विस्मृति थी। इसलिए बोलते देख लीजिए अज्ञानम चैव वेदांतई तस्मिन् नष्टि का विश्वता, जैसे नींद खुल गई सपने के पदार्थ खत्म हो गए, ऐसे ही व्यक्ति यदि परमार्थ में पहुंच गया। इसलिए मैंने कभी आपको बताया, आप बुद्ध का जीवन पढ़ के देख लीजिए, बुद्ध ने कभी भी अपने पिछले जन्म का उल्लेख इस बात के लिए नहीं किया कि मैं राजपाट छोड़ के आया, कि ये छोड़ के आया, वो छोड़ के आया। बहुत सारे लोग अपनी वर्तमान में अपने अतीत की कहानी दोहराते रहते हैं, मैं तो प्रोफेसर था वो छोड़ के आ गया, मैं अलाना था वो छोड़ के आ गया। कहीं ना कहीं अभी भी वो सच्चा मान रहा है उसको। अरे जब तक उसको पकड़ा हुआ था तब तक तू बड़ा नहीं हो सका, उसको छोड़ने के बाद तू बड़ा कैसे हो सकता है? पहले उसको छोड़ने के साथ अपने को बड़ा आज समझ रहा है, कभी उसको साथ जुड़ करके अपने को बड़े बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जैसे आप सपने में आज रात सपने में करोड़ों रुपए दान दे के आए हों, तो प्रेमपुरी में चर्चा नहीं करते कि आज मैंने सपने में करोड़ रुपए दे दिया। करते हो? कुछ नहीं करते जाते। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो तुमने दिया ही नहीं। ऐसे ही क्या शंकराचार्य लिखते हैं, अज्ञानैव अज्ञानम चैव वेदांत तस्मिन नष्टे। जैसे सपने के नष्ट हो जाने पर, नींद के नष्ट हो जाने पर सपने झूठे हो जाते हैं, ऐसे ही अज्ञान के नष्ट हो जाने पर संसार झूठा हो जाता है। लेकिन समझना आपको क्या है, जिस समय आप देख रहे थे उस समय भी वो नहीं था और अभी भी वो नहीं है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में अंतर यह है कि एक जगह आप जगे हुए हैं और एक जगह आप सोए हुए हैं। बस बात केवल जगने की है, शंकराचार्य कहते हैं। अच्छा आगे बोलते हैं, देखो 95 नंबर का श्लोक, यथा रज्जुम परित्यज्य सर्पम गृणाति वै भ्रमात् तदवत् सत्यम विज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धी। ये बताया, देखो ये बुद्धि जो है इसमें जब मूढ़ता का प्रवेश हो जाता है। कृष्ण ने एक वाक्य बड़ा सुंदर लिखा है भगवद गीता में, बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं, आत्मबुद्धि प्रसादजम। प्रसाद बने हां आनंद। कृष्ण कहते हैं बुद्धि जब आत्मा में लगती है तभी जीवन में प्रसन्नता मिलती है। तुम सोचते हो कि किसी विषय में लगकर के बुद्धि आनंद प्राप्त कर ले, ये कहीं तुम्हारी भूल है। कितने ही लग गए आप, कितनी मेहनत करी, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी भर्तृहरि ने लिखा है, क्या आदमी था वो, एक दिन अकेले में बैठा था, जैसे तभी कभी बैठते हो अकेले में, किसी बाबा जी के पास में गया। बाबा जी ने कहा बड़े सुखी हो तुम। उसने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, धनम यदि मेरु तुल्यम, हे महाराज धन यदि सुमेरु पर्वत के समान भी हो जाए, लेकिन यदि सृष्टा के प्रति प्रेम नहीं है तो ये धन दो कौड़ी का नहीं है। धन तो अर्थवान तभी है, धन मूल्यवान तभी है यदि आदमी को सृष्टा की अनुभूति है। धन तो वही धन है जिसका उपयोग कभी हम उसको पाने के लिए करते हैं। इसलिए श्रुति का वाक्य है, तम एतम पुरुषम ब्राह्मणः विविधि संति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर महापुरुषों की कृपा होती है, उनके मन में अनंत वैभव आने के बाद धनम यदि मेरु तुल्यम, भर्तृहरि लिखते हैं, ऐसा धन जिधर देखूं ढेरी ढेर लगा हुआ है, लेकिन ये सृष्टि जिसने बनाई है ये उसकी है। चौकीदार तो आते हैं और चले जाते हैं, यही तो परंपरा है। तुम समझ नहीं पाते, जिस समय बिल बनाते हो उसी समय समझ जाया करो। सब आत्मज्ञान देते हैं, लेकिन उस आत्मज्ञान को व्यवहार की एक रस्म समझ करके, और तुम नॉमिनेशन भी करवा लेते हो, तुम क्या समझते हो ये व्यवहारिक एक रस्म है? ये व्यवहारिक रस्म नहीं है, ये कहीं आपको परमार्थ की तरफ प्रवृत्त करने का एक इशारा है। किसी का नहीं होता अभी तक, इसलिए बताते हैं। देखो, यथा रज्जुम परित्यज्य, रज्जु माने अधिष्ठान, अधिष्ठान को व्यक्ति छोड़ देता है, परित्यज्य माने छोड़ देता है। और जैसे ही आपने सच्चाई को छोड़ा, आपको झूठे को पकड़ना पड़ता है। सच्चाई के छूटते ही अर्जुन ने कहा कृष्ण से, कृष्ण ने कहा कि कल इसको मारना है द्रोणाचार्य को। कहे तो महाराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य तो इस प्रकार से पांडवों की सेना को खत्म करते जा रहे हैं, ऐसे ही खत्म करते रहे तो फिर युद्ध जीतना कठिन काम है। कृष्ण को ऐसे समझ नहीं पाया हम लोगों ने। जगह कहीं मैं था, बहुत पुरानी बात हो गई, नवसारी में चातुर्मास कर रहा था, वहां एक आता था डॉक्टर, उसने मेरे से एक सवाल किया। उसने कहा महाराज कृष्ण कहते हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुम कभी पाप को प्राप्त नहीं होगे। आदमी बुरा काम इसीलिए छोड़ता है कि उसको पाप का डर है, नरक जाने का भय है, इसीलिए छोड़ता है ना। वो तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि। हमने कहा आपने पूरा श्लोक पढ़ा नहीं अभी तक, है पूरा पढ़ो। कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा, जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों समान हो गए हों। अब आप विचार करो, आप सुखी होने के लिए पाप करते हो कि दुखी होने के लिए पाप करते हो? है सुखी होने के लिए, सीधी बात है ना, ईमानदार आदमी है, सुखी होने के लिए पाप करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि पहली शर्त यह है, यदि तुम्हारे जीवन में सुख और दुख समान है तो आपसे पाप होगा क्या? पाप तो तभी होगा जब आपके जीवन में सुख और दुख में बहुत गहरा भेद होगा, सुख और दुख में बहुत ज्यादा अंतर होगा, तब आप चाहते हैं कि मैं दुख से छूटूं और सुख को पकड़ूं। लेकिन कृष्ण ने शर्त लगा रखी है पहले, सुखे दुखे समय कृत्वा। केमिस्ट्री के क्या सूत्र होंगे ऐसे? आगे कहते हैं लाभा लाभौ, लाभ के लिए झूठ बोलते हो कि हानि के लिए झूठ बोलते हो? अब देखो एक छोटी सी बात यहां पे बात पूरा करता हूं, समय भागता रहता है क्या करें। यदि लाभ और हानि दोनों समान हो आदमी जो झूठ बोलता है वो लाभ के लिए बोलता है कि हानि के लिए बोलता है? लाभ के लिए बोलता है। और कृष्ण कहते हैं कि कुछ प्रवृत्त होने से पहले पाप तुम्हें तभी नहीं लगेगा यदि तुम लाभ और हानि दोनों को समान समझते हो। तो मुझे लगता है तब तो पाप हो, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। और अंतिम में तो कृष्ण ने गजब कर दिया। कृष्ण कहते हैं लाभा लाभो जया अजयो, जीत और हार यदि तुम्हारे लिए कोई मायने न रखती हो तब तुम यदि पाप करते हो तो तुम्हें पाप छू नहीं सकता। हम खाली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यदि युधिष्ठिर की दृष्टि में जीत और हार दोनों बराबर होती तो द्रोणाचार्य की मृत्यु की जरूरत न पड़ती, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारा जा रहा है वो जीतने के लिए मारा जा रहा है कि हारने के लिए मारा जा रहा है? और कहीं जीत के प्रति बड़ा गहरा आकर्षण है, जीत के प्रति बहुत गहरा लगाव है। जैसा ऐसा होता है ना, कोई चीज आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई तो आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से मुझे जीत चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जया अजयो, यदि तुम्हारे जीवन में जय और पराजय दोनों समान हो गए हो तब तुम पाप करते हो तो तुम्हें पाप नहीं छू सकते। लेकिन सवाल तो फिर खड़ा ये होता है जिस आदमी के जीवन में जय और पराजय समान हो गए हो वो आदमी पाप करेगा क्यों? प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी। कहीं बुद्धि में जीत का इतना महत्व तो बन गया, जीत जीवन में कुछ इतनी आवश्यक बन गई, यदि द्रोणाचार्य की बलि देनी पड़े तो द्रोणाचार्य की बलि भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जीत का महत्व। जब आदमी के जीवन में, मैंने पहले भी कभी आपको ये बात बताई, फल का बहुत ज्यादा महत्व बन जाता है तो आदमी की क्रियाएं बहुत निम्न स्तर की हो जाती हैं। फल इतने महत्वपूर्ण, इसलिए कृष्ण ने जीवन में फल की इच्छा त्याग करने के लिए इसीलिए कहा कि यदि आपके अंदर फल की इच्छा नहीं है तो आपसे कभी बुरा कर्म कराया नहीं जा सकता है। अब वहां जीत इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब अर्जुन से ये बात कही, आप कभी महाभारत देखना थोड़ा सा, जब द्रोणाचार्य मर जाते हैं और कौन मारता है द्रोणाचार्य को? धृष्टद्युम्न मारता है। तो अर्जुन पे रहा नहीं गया, रात को धृष्टद्युम्न के कमरे में जाता है धृष्टद्युम्न को मारने के लिए। उसने कहा यार जीतना हारना एक जीवन का पहलू है, लेकिन किसी आदमी को ध्यान में बैठा हो और तब उस आदमी की गर्दन काट देना ये तो बिल्कुल खिलाफ है ये तो। लेकिन आप देखना वहां प्रसंग, कृष्ण वहां पहले से खड़े हैं, बैठे थे। अर्जुन को इतना भयंकर क्रोध था, यदि शायद कृष्ण वहां न होते तो अर्जुन धृष्टद्युम्न को मार देता, एक हत्या और हो जाती। कृष्ण ने यही समझाया यदि धृष्टद्युम्न के मारने से द्रोणाचार्य जीवित हो जाता है तो मार। कृष्ण ने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, कृष्ण ने खाली बुद्धि पलटी है, विचार पलटे हैं बस। और जब व्यक्ति का विचार पलटता है तो साथ में आदमी की क्रिया भी बदल जाती है। इन विचारों का बदलना बहुत जरूरी है। यही खाली विचारों के बदलने की बात कहते हैं, यथा रज्जुम परिरज्य सर्पम गृणाति वैभ्रमात्, सर्प का ही गरण होता है जब अधिष्ठान का मैंने सत्य का त्याग हो जाता है, तदवत सत्यम अभिज्ञाय। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर जो प्रथम श्लोक है वहां श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया है। पढ़ा आपने पहला श्लोक पढ़ा है, जनमाद्यस्य यतान्वयतरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट, वह अंतिम में लिख दिया सत्यम परम धीमही। बहुत आगे जाकर के कहते हैं वो, इसी प्रकार कहते हैं तदवत सत्यम अविज्ञाय, उसी प्रकार से सत्य को न जानने के कारण अविज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धी, मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति सत्य को नहीं जानता, इसलिए केवल उसको संसार दिखाई देता है। आदमी जब सत्य को जानता है ना तो उसको बड़ा कष्ट होता है। महाभारत में आपने शांति पर्व तो सुना है कि नहीं, थोड़ा बहुत पिछली बारी सुनाया था मैंने। जब युधिष्ठिर को पता लगा कि कर्ण उसका बड़ा भाई था, तो जो अपने को इतना बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर समझता है, उसने कहा कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया। जो उसने कर्ण के बारे में लिखा है, उसका शूरवीरता, उसकी दानवीरता, उसका सौंदर्य, अब उसको सारे गुण किसमें दिखने लग गए, कर्ण में दिखने लग गए। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं, लिखा है तुलसीदास ने, जाने बिनु होय न प्रतीति और बिनु प्रतीति होय न प्रीति। जानते हो प्रतीति होती है, प्रतीति होती है तो प्रीति होती है। अब उसकी कर्ण के प्रति इतनी प्रीति हो गई, कर्ण के प्रति इतना आकर्षण हो गया, लेकिन कहने की बात महात्मा लोग कहते हैं, आगे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। जब बात हाथ से निकल जाती है तब हमें पश्चाताप होता है, उस पश्चाताप का कुछ महत्व नहीं। इसी प्रकार शंकराचार्य कहते हैं तदवत सत्यम अभिज्ञाय, सत्य को अभिज्ञाय मैंने बिना जान करके, जगत पश्यति मूढ़धी, जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है, गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याम ही श्याम, श्याम दिखाई देता है, जमुना का जल श्याम दिखता है। और उसने तो ऐसा कहा कि महादेव जी का कंठ भी श्याम दिखाई देता है, मृग मद भी श्याम दिखाई देता है, ऐसा कौन सा है जहां श्याम नहीं दिखाई देता है। एक गोपी चिढ़ गई भगवान से, एक पंडित जी के पास गई है। आदमी भगवान से खुश हो तो पंडित के पास जाता है, भगवान से नाराज हो तो पंडित के पास जाता है। बच्चा पैदा हो गया तो पंडित को बुलाओ, और दादाजी मर गए तो पंडित के पास जाओ। उसने कहा पंडित जी कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें कृष्ण को भूल जाऊं मैं। तो उसने कहा इनको महादेव जी की कथा सुनाते हैं। तो उसने कहा अस्ति कश्चित वाराणस्याम, अरे उसने कहा ये वाराणस्याम में भी श्याम आ गया, कहां से तू ले आया उसको पकड़ करके। जिसके प्रति प्रेम होता है उसे आप भूलने से भूल नहीं सकते, और जिसके प्रति प्रेम नहीं होता वो याद करने से याद नहीं आता। इसलिए 95 नंबर के श्लोक हो गए, 96 की चर्चा कल करेंगे।